ओम शांति। अमृत वेले का बुक है, सातवीं और आठवीं पॉइंट्स दो दी हुई हैं। सातवीं पॉइंट में है, अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देखते हैं, ड्रिल करने के लिए समय की सीट पर पहुंचने वाले नंबर वार होते हैं। तीन प्रकार के बच्चे अमृत वेले की ड्रिल में होते हैं। पहला है समय बिताने वाले, दूसरा है संयम निभाने वाले, तीसरा है स्नेह में निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना होता है। कई बच्चे बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। कई ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते हैं। बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अथवा अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। यह है मोटी बुद्धि वालों का पोज। संयम निभाने वाली आत्माएं बाप के आगे गुणगान करने के बजाय, बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय, निद्रा के नशे की प्राप्ति में ज्यादा रहती हैं। सेमी नशा भी होता है, साथ साथ समय की समाप्ति का इंतजार होता है। इसका मूल कारण है आत्मा का भारीपन, अर्थात मोटापन। इस मोटेपन को मिटाने के लिए बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और क्या होगा, और खुराक, करेक्ट। बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और बुद्धि का भोजन संकल्प है उसकी परहेज रखो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन स्वीकार ना करो। इस परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल यानी स्वयं पर नियंत्रण चाहिए। एट्थ पॉइंट में है, माया बड़ी चतुर है। वह विशेष अमृत वेले बाप से किनारा कराने के लिए आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के इस खेल में रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को कई बच्चे गवा देते हैं और गोल्डन समय को गवाने के कारण सहज प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। फाउंडेशन कमजोर हो जाता है। इसलिए माया की चतुराई को समझो। माया की यह बाजी साइट सीन है, उसमें रुको नहीं। मन बुद्धि बाप के हवाले कर बाप के पास बैठ जाओ। ओम शांति। तो बाबा ने इसमें विशेष दो तीन बातें बोली हैं जो चिंतन के लिए। एक तो व्यर्थ संकल्प का जो भोजन करते हैं, दूसरा आत्मा का भारीपन, तीसरा समय को गवा देना, क्योंकि बाबा ने इस समय को गोल्डन चांस बोला है। अगर ब्राह्मणों के लिए समय देखा जाए, कौन कौन से समय वैल्यूबल होते हैं? अमृत वेला और नुमा शाम का योग। और ऐसे देखें तो जनवरी मास है, जून मास है, दादी का दिन है, बाबा का मिलन का दिन। ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जो बहुत संगम के अंदर भी बहुत वैल्यूबल है। भक्ति में भी देखें तो टाइम की बहुत बहुत महिमा की गई है। कई बार ऐसा भी देखते, कुछ मुहूर्त ऐसे होते, अगर उस समय विधि पूर्वक अगर दान या कुछ करते हैं तो वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर उस समय को निकलने के बाद वही काम किया जाता है तो फिर क्या होता है, वो सिद्धि उसमें फिर नहीं मिलती है। ऐसे ही अपने ब्राह्मण परिवार में भी जो ये बाबा ने अमृत वेले का समय फिक्स किया है, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि खुद जो आदि देव आदि देवी थे वो भी समय पे ही उठते थे। शुरू में अमृत वेला तो इतना नहीं होता था कि संगठन में करें, लेकिन जब यहाँ पे आए तो रेगुलर फिक्स कर दिया गया कि इतने बजे से इतने बजे अमृत वेला सबको करना है। एक बात इस पे गोल्डन चांस पे याद आती है। एक बार एक बहन जो है, बाबा जा रहे थे रास्ते में ही, पांडव भवन में ही बीच में ही बहन मिली, तो उसको बोला बाबा ने कि बच्ची कल रात में नींद अच्छी आई? तो उसने बोला हाँ बाबा बहुत अच्छी नींद आई। तो बाबा ने उसे देखा और बोला कि बहुत अच्छी नींद आई? तो बोला जी बाबा। तो बाबा ने बोला बच्ची जैसे दुनिया के हालात हैं, ऐसे हालात को देखते हुए बच्चों को नींद आनी नहीं चाहिए। और सही बात भी है, हम भी कुछ एक दो हफ्ते से इसी बात का चिंतन कर रहे थे कि संसार में दुख कितना बढ़ रहा है। अगर हमारा एक उंगली इतना सा कटता है तो कितना इधर उधर भागते हैं लगाने के लिए कुछ। तवे पे रोटी सेकते वक्त अगर जल गया तो छोड़ के पहले उस पे कुछ लगाना है। आप सोचिए, ना जाने कितनी ऐसी लोग हैं जिनको जिंदा जला दिया जाता है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहीं भूकंप में बाढ़ में खत्म हो जाते हैं। आप सोचिए उनको कितना पेन होता होगा। कई बार अव्यक्त मुरली में सुना ना, बाबा कहते दुखियों की पुकार सुनो, दुखियों की आवाज सुनो। लेकिन जब हमारे कनेक्शन का या हमारे संबंध संपर्क का कोई एडमिट हुआ या कुछ उसे प्रॉब्लम आई तब क्या होता है, तब हम तुरंत योग करते हैं, उसके लिए योग का दान देना। और नहीं होगा फोन करेंगे मैसेज करेंगे कि फलानी बहन जी या ये जो है थोड़ा सा इनके लिए योग का दान देना। क्यों, क्या ये विश्व की आत्माएं हमारी कुछ नहीं लगती? कई बार बाबा ने बोला अपने आप को क्या समझो, पूर्वज जगत अम्बा। क्योंकि भाई बहन में हो सकता है, शायद भाई बहन में ये होता है ना, ये मेरा है वो तेरा है, लेकिन जो एक माँ का स्वरूप है वो सबके लिए है, वो अपने लिए कुछ नहीं रखती। तो इसमें जो एक बात आई कि जो अलबेलापन आलस, ये दो शब्द लिए, अगर शायद हमारी बुद्धि में ये भी इमर्ज रहे कि इतनी सारी आत्माओं का हमें कल्याण करना, इतनी सारी आत्माओं के लिए हम निमित्त बने हुए हैं, तो थोड़ी देर कम से कम उनके दुखों को, उनकी प्रॉब्लम्स को एक बार देखना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई के साथ हम बुरा होता हुआ देखते तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो भाव दातापन के स्वतः आ जाते हैं। और जब वो भाव एक बार आ जाएगा तो ये तो संसार में भी होता, उन लोगों को भी कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब कहीं देखते हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन समाज सेवा में ही दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वो प्रॉब्लम्स दुनिया वालों की देखी है। तो एक तो अलबेलापन और आलस को खत्म करने का एक ये तरीका है कि जो भी ऐसी आत्मा है, ब्राह्मण परिवार में भी कई ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर बहुत घुटते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सकाश की जरूरत है। तो अगर इस चीज को हम देख करके प्रैक्टिकल में भी लाएंगे तो कहीं ना कहीं बाबा से वो कनेक्शन हमारा और स्ट्रांग होगा, वो जो अलबेलापन आलस या नींद में आते हैं वो थोड़ा कम होगा। उसके लिए कहीं ना कहीं उनके दुखों को हमें समझना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो अमृत वेला है वो नींद या समय बिताने वाला ना हो? क्योंकि जैसे हमारे लिए कोई बात आती तो उस समय से हम योग का टाइमिंग भी बढ़ा देते हैं, और फिर जब वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, बाबा ने सुन ली, मुराद पूरी हो गई, फिर उसकी खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद मस्त, फिर कुछ आया, फिर जग गए। इसीलिए निरंतर वो चीजें देखते रहना। कितने लोग भय से जी रहे हैं, कितने लोगों के पास आज भी खाने को नहीं है, कई लोग मर जाते, ठंड होती है। हम जहां रहते थे, हम तो रात में हमारा काम ऐसा होता था 11-12 बजे आना, एक बार हमने देखा डेड बॉडी रास्ते में ही पड़ी है, कोई उसको उठाने वाला नहीं है। हम पूना में थे, रात में जिस सेंटर पे सो रहे थे उधर बालकनी से बाहर का पूरा दिखता है। रात में कुछ लोग एक बुजुर्ग माता को बहुत मार रहे थे, वो सीन बस देख के हम पूरी रात नहीं सोए, जबकि हम इतना थके हुए थे कि बस दौड़ के आते थे, बस अब जाके बस सोना है। तो शायद कहीं हमारे अंदर वो जो दातापन का भाव है वो अगर एक बार जागृत हो जाए तो नींद नहीं आएगी। एक बार लाइन लगा दी जाए और टोली सबको बांट दे जा रही हो तो जो लेने वाले होते वो सोचते जब लाइन कम होगी या तब जाएंगे या जल्दी से लग लेंगे, वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहते। लेकिन एक टोली बांटने वाला जो होता है वो चाहे जितनी भी देर बांटना पड़े, क्योंकि उसको देने का काम करना है। देने वाला कभी नहीं थकता, लेने वाला तो फिर भी एक बार सोचेगा कि कहाँ लें, ये चलो छोड़ो बहुत लंबी लाइन है। खाने में भी देखते हैं हमारे यहाँ कभी ज्यादा लाइन होती है तो सोचते छोड़ो बाद में लेंगे, नहीं लेंगे। दूसरी चीज बाबा ने बोला यहाँ पे, मोटी बुद्धि व्यर्थ संकल्प का भोजन, आत्मा भारी हो जाती है। दूसरा बोला अशरीरीपन की एक्सरसाइज। एक जिम कोच था, वो बताते बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन उसका एक एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, तो उसके बाद से उसकी एक्सरसाइज बंद हो गई। एक्सरसाइज बंद हो गई तो कहता है कि मेरे पास एक्सरसाइज के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं कर सकता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी उस लायक नहीं हुई, लेकिन उसके पास एक्सरसाइज करने के, योगा करने के बहुत सारे तरीके, तो अब वो दूसरों को बता सकता है, खुद नहीं कर सकता है वो। तो एक्सरसाइज का या यूं कहें कि ज्ञान का नॉलेज होना, और उसको बाबा ने जैसे बोला इसमें एक्सरसाइज, माना कि उसको कर्म में यूज करना, वो दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि हमारे पास नॉलेज कितनी है वो एक अलग है, और उसको, उस नॉलेज को हम कर्म में कितना यूज करते हैं वो एक अलग बात है। जैसे एक्सरसाइज के लिए बोला तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या बोला, ड्रिल, पांच स्वरूपों की ड्रिल, अशरीरीपन की ड्रिल, व्यर्थ संकल्पों के लिए भी कुछ ना कुछ। एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक भाई था कोई, तो उसकी कोई कमी देखी तो थोड़ा सा संकल्प चला उसके ऊपर, तुरंत हमने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमने कहा भी इसको ठीक करना पड़ेगा। तो हमने बैठकर ढूंढा ऐसी पांच आत्माएं जो बड़ी, जिनका मतलब स्वभाव संस्कार इतना प्रसिद्ध है कि वो 80% में फेमस है अपने स्वभाव संस्कार के कारण। तो ऐसी पांच आत्माओं को ढूंढा, और हर टाइम बीच बीच में उनकी कोई ना कोई विशेषता को बार बार रिमर्च करना, ताकि जैसे ही वो आत्मा हमारे सामने आएगी तो उसकी कमी दिखने की बजाय हमें तुरंत उसकी विशेषता दिख जानी जरूरी है। तो ये शुरू में करने में तो थोड़ा सा लगा, क्योंकि ऐसी आत्मा में विशेषता ढूंढना भी बड़ी बात लगती है, लेकिन फिर भी, लेकिन विशेषता माना ऐसी नहीं कि कोई थोपी हुई हो या जबरदस्ती की ढूंढी हुई, विशेषता माना वो होनी चाहिए उसके अंदर। तो ऐसी पांच आत्माओं को ढूंढा, और उसमें से एक आत्मा जब भी सामने आती थी उसकी तुरंत विशेषता को याद करना, ताकि हमारे जो संकल्प है वो मतलब शुद्ध निकले, प्योर निकले, ताकि निगेटिव ना चले। और जब योग में बैठेंगे तो जो हमारे अंदर का चला हुआ होगा, जो हमने किया होगा, हम उसी की रिस्पांस मिलता है। ऐसा नहीं कि योग में कुछ नया करेंगे तो ठीक होगा, सारा दिन जैसा हमने कर रखा होगा, सारा दिन जैसे कर्मों का बीज बो रखा होगा, योग में जैसा बैठेंगे हमें वैसे ही अनुभव होंगे। इसलिए हम ऐसा कई बार समझते हैं कि अपने आप को सारे दिन में ऐसा तैयार कर दो, इतना शुद्ध संकल्प, हमारा जीवन ऐसा हो कि जब हम योग में बैठे तो हमें ऐसा ना अनुभव हो कि हम भगवान को याद करने के लिए बैठे, बल्कि ऐसा अनुभव हो कि भगवान हमें याद कर रहा है। इसके लिए सारा दिन का जो जीवन होता है, हम जो लोगों से मिलते हैं उनके बारे में कैसा सोचते हैं, जब कर्म में आते हैं तो उनके साथ कैसे बात करते हैं, या कई बार होता है स्थूल में तो सामने सामने हम अच्छी बात करते हैं, मिल लिए, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं तो तुरंत इतना देर आके टाइम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कर्म में अच्छा किया पर उसको बाद में संकल्प में क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। कर्म बिल्कुल एक्यूरेट किया लेकिन कहीं ना कहीं दबाववश, किसी कारणवश, जिसके कारण फिर उसका असर हमारे संकल्पों पे जाता है। और व्यर्थ संकल्प हमें कैसे कैसे आते हैं जिनको हम शुद्ध में चेंज कर सकते हैं, कल कर लेंगे, जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं। तो व्यर्थ संकल्प को और कौन सा ऐसा तरीका जिससे हम शुद्ध में चेंज कर सकते हैं, एक जगह तो मुरली इसमें तो नहीं है, शुद्ध संकल्पों को चेंज करने के लिए बाबा ने बोला था कि मुरली के चिंतन से, क्योंकि, और इसमें भी कई बार हम क्या करते, जितना भी मुरली का जो चिंतन होता है ज्यादातर हमने देखा वो दूसरों के लिए, जैसे ही बाबा ने कोई बात बोली कैसे करते हो, ये देखा इस भाई के लिए आज बात आ गई, बाबा ने इसको भी बोल दिया, और जितना भी पॉजिटिव होगा ना, देखा आज बाबा ने, कल हम सोच रहे थे आज बाबा ने वही बात मुरली में बोल दी, वो जो होगा वो हमारे लिए होगा, और जितना भी निगेटिव होगा जो भी हमारे आस पास वाली आत्मा सब उनके लिए होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो दृष्टि है मुरली को स्वीकार करने का, या मुरली को या किसी के भाव को, संकल्प को स्वीकार करने का, वो कैसा है। जैसे कि कोई खराब बर्तन या कोई खराब चीज, उसमें कोई स्वच्छ चीज भी डाल दो तो वो भी दाग लग जाएगा, वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए मुरली या जो चिंतन हम करते हैं उस चिंतन को क्या है, रजो प्रधान है, सतो है, तमो है, किस तरीके का है। नहीं तो बाबा तो हमें प्योर दे रहा है, क्लीन दे रहा है, उसको हम अपनी बुद्धि से और ही अलग कर देंगे, कुछ का कुछ बना देंगे समझने के लिए। इसलिए शुद्ध संकल्प, दूसरा एक्सरसाइज, ड्रिल जो बाबा ने बोली है, और ड्रिल में भी अगर जहां तक हो सके पांच स्वरूपों का या अशरीरीपन का, ये तो करना ही करना है, लेकिन कुछ ऐसा करना है जो हमारे प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र से संबंधित हो। ऐसा नहीं हो कि वो तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसके लिए तो पहले हर आत्मा को समझना बहुत जरूरी कि हमारे आसपास वाली आत्मा कैसी है, क्योंकि कई जगह हम ज्यादातर दूसरी आत्मा पे डिपेंड रहते हैं कि ये आत्मा जो कर रही है ये गलत कर रही है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस आत्मा का स्वभाव संस्कार जानने के बाद फिर हमें क्या करना है, ज्यादातर हम 90% उससे उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसा कर रही है तो इसलिए हो रहा है। जैसे बाबा ने इसमें बोला ना, बहानेबाजी देते हैं, तो बहानेबाजी का खेल बाबा को दिखाते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के। और फिर बाबा ने इसमें बोला कि समय को व्यतीत करते हैं, मतलब उसका इंतजार करते कि कैसे वो कब पूरा हो। और जब भी हम किसी से जब हम योग में बैठते हैं तो अमृत वेले खास कईयों ने बताया कि उस समय उनको ज्यादा होता है, लेकिन नुमा शाम के वक्त नहीं होता है। इसलिए एक बहुत अच्छा है कि अपना अगर हम अमृत वेला अच्छा करना है तो उसके लिए दिनचर्या, उसके लिए साथ साथ नुमा शाम का जो योग है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि नुमा शाम का योग अगर स्ट्रांग होगा तो वो अमृत वेला भी बेस्ट हो सकता है। इसके अलावा जैसे कई बार इसमें जैसे बोला बाबा ने कि प्यार को निभाने वाले, एक तो दो चीज है इसमें, एक है प्राप्ति। अगर किसी को कोई काम के लिए लक्ष्य है उसका और उस लिए योग करता है, साधना करता है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बार बार उस काम को करने के लिए कोई विघ्न भी आएगा तो भी क्रॉस कर जाएगा। जैसे पहले बताया कि किसी पे कोई विघ्न आता है तो विशेष अमृत वेले का दिन फिक्स कर लेते हैं, इस जगह करना है, 21 दिन के लिए करना है, 15 दिन के लिए करना है, और जैसे ही वो पूरा हो गया तो बस मनोकामना पूरी हुई, अपने रास्ते पे आ गए। तो लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा होना चाहिए। जैसे पहली चीज बताई कि इतनी दुखी अशांत आत्माएं तड़प रही है, जब हमारा कोई ऐसे होता तो हम उसके लिए योग करते। इसलिए ऐसा ही समझे कि पूरे विश्व की आत्माएं हमारी है, उसके लिए पहले उनके दुखों को समझना होगा, उनकी पीड़ाओं को समझना होगा, तो ये जो जागृति आ जाएगी। या फिर हमारा प्रेम बाबा के लिए वो बहुत गहरा होना चाहिए। एक बार ऐसे ही हम अमृत वेले कभी भी सोच के नहीं बैठते हैं कि बाबा से ये आज करना वो करना है। एक दिन ऐसे ही बैठे थे बाबा के पास, तो हमने बाबा से बोला कि बाबा आज ना सब जगह चक्कर लगाते हैं विश्व में, तो वहां पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा था जैसे इतना दुख है, लोग इतना मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। अगर एक तो जो जिसके साथ कुछ होता है वो तो होता है, लेकिन उसके आसपास की भी जितनी आत्माएं होती उनको भी वो दुख फील होता है। तो फिर जैसे लगा कि बाबा ने कहा कि देखो ये समय जो है वो सभी के घर वापस जाने का है, और हर एक आत्मा को अपना अपना हिसाब किताब चुपचुप करके जाना है, इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता है। तो उस समय हमें ये लगा कि देखो इनके पास तो यही साधन है हिसाब किताब चुपचुप करने का, लेकिन बाबा की हमारे ऊपर कितनी कृपा कहो, रहम करो, जो कि हम बाबा को थोड़ी देर याद करते हैं और उससे वो हमारे सारे विकर्म जो भी उतनी देर में भस्म कर देता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। और सोचो अगर जितना भी हमने बाबा को याद किया, अगर वो सारे विकर्म एक बार बाबा हमको दिखा दे कि देखो अगर नहीं याद हुए होते तो ये सजा तुमको भोगनी पड़ सकती थी, यहां कोई रास्ते में गिरे और किसी ने हमें उठा दिया तो उसका कितना एहसान मंद रहते हैं कि इस भाई ने हमें इतनी मदद करी थी। और जो भगवान ने हमारे विकर्म भस्म कर दिए अपनी याद से, उसको कैसे भूल जाते हैं। जैसे साकार बाबा बोलता था ना कि मम्मा बच्चों को शर्म भी नहीं आती, बाप के सामने बैठ के बाप से ही कहते हैं कि बाप की याद भूल जाती है। तो हमें उस दिन बहुत वो लगा कि बाबा शायद इतना ऋण है उसके प्यार का हमारे ऊपर कि जो शायद दुनिया में थोड़ी सी किसी ने हमारी मदद कर दी पैसे की स्थूल चीज की, हमें बार बार याद रहता है और उसके लिए कुछ करना होगा तुरंत हम तैयार रहेंगे, लेकिन जो बाप ने हमारे ऊपर इतना प्यार का शक्तियों का गुण का जो ऋण चढ़ाया है इसकी विस्मृति हो जाती है। शायद अगर इसको भी याद रखे घड़ी घड़ी तो कितना हम कर सकते हैं। या फिर अपना ज्ञान से लेकर अब तक का समय देखें कि जितना हमने याद किया और उससे जो भी हमारे विकर्ण विनाश हुए, अगर वो कहीं हिसाब किताब के रूप में आ जाते, फ्रैक्चर में आ जाता, कोई बड़ी घटना में आ जाता, सोचो छोटा सा अगर कोई हमें कुछ बोल देता है तो कितनी फीलिंग आती है। तो बाबा का कितना एहसान है हमारे ऊपर जो हमें कैसे वो सेफ रखता है। और इसके अलावा क्या कहेंगे, जिससे हमारा ये जो नींद है, निद्रा में चले जाना, ये सब ना हो। एक तो लव है, दूसरा हमारी जिसमें बाबा ने बोला प्राप्तियां, तो प्राप्ति में एक ये भी प्राप्ति है। सोचो किसी का कोई हिसाब किताब, मान लो आपको बता दिया जाए कि एक हफ्ते बाद आपका हिसाब किताब में ऐसा है कि फ्रैक्चर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बाबा को याद कर लिया और वो खत्म हो जाए तो कितनी खुशी होगी। डॉक्टर ने अगर थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया, दवा दे दी अच्छी और ठीक हो गए तो कितना खुश हो जाते कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसने दवाई इतनी अच्छी दे दी। और वो जो डॉक्टर है उसने हमारे साथ ना जाने किस किस घड़ी उसने कब कब हमें बचा लिया होगा। लेकिन कई बार हम समझते हैं ना, हमारा योगी नहीं ठीक होगा, शायद बाबा हमें याद ही नहीं कर रहा है, शायद बाबा हमें प्यार ही नहीं करता है। तो इस चीजों को इमर्ज रखने से भी बाबा से लव बढ़ेगा। और अगर एक बार किसी से जब लव बढ़ जाता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखेंगे कि रात को थके हुए थे, थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए जो है अमृत वेला अच्छा नहीं हुआ। और नहीं, आपसे पूछेंगे, बताइए ना, आपका तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा अमृत वेले, तो बताइए अमृत वेले के लिए। हाँ, ये भी बात अच्छी है। कई जगह बाबा ने बोला है कि जो रात्रि का समय होता है वो अगर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि रात में जो हम सो रहे होते हैं, या तो व्हाट्सएप या फिर किसी से बातें करते करते, और रात में 11-11 बार, एक जगह तो ऐसे बोला रात में जागरण करते रहते हैं बच्चे, जागरण करके फिर सोते हैं। एक होता बाबा को गुड नाइट करी, उसके बाद गुड नाइट हो गई, फिर उसके बाद मोबाइल में चलते रहते हैं। तो रात का जो टाइम है वो हमारा जो बाबा को सोने का है, जैसे बताया पहले तो बिना योग किए रात में ऐसे सोते भी नहीं थे, 10 मिनट 5 मिनट बैठ के बाबा को याद करके फिर सोने का। चार संबंध से रोज बाबा को याद करना चाहिए। पहला है अमृत वेला, जिसमें वो हमारा बाप बनता है, बाप के रूप में जिससे हम उसे याद करते हैं। दूसरा है जब वो टीचर के रूप में हमें पढ़ाने आता है, मुरली। तीसरा है सद्गुरु के रूप में नुमा शाम का योग। और चौथा धर्मराज। कई बार बाबा ने बोला है कि रात्रि को अपने बाप को धर्मराज समझ करके जो भी हिसाब किताब है उसको वो दे करके छुट्टी ले लो, तो वहां धर्मराजपुरी में जाने से बच जाएंगे। तो ये चार मतलब हमारे जीवन के ऐसे पिलर कह सकते हैं, अगर ये हमारे पक्के हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बाबा से कनेक्शन भी बना रहेगा और बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये चारों चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए, जैसे इसमें बोला है ना, नियम निभाने वाले, संयम निभाने वाले। ऐसा नहीं कि बस फटाफट बाबा ये हुआ टाटा बाबे। जानकी दादी ने एक बार बोला था कि मेरा एक चीज है बाबा से संबंध जो मैं कभी नहीं भूलती, वो धर्मराज। यही बाप धर्मराज में मिलेगा, धर्मराजपुरी में। इसीलिए जो भी गलती है या जो भी बात है ध्यान रखने का। दिल्ली में बाबा आए हुए थे और सभा, वो रिकॉर्डिंग में भी है, उसमें बाबा ने सबके सामने पूछा, बच्चे हाथ उठाओ कौन कौन बाबा को याद करता है, तो किसी ने बोला माँ के रूप में, साजन के रूप में। बार बार बाबा पूछ रहे थे, ऐसा लग रहा था बाबा सुनना चाह रहे थे कोई, बस उसमें से शायद जगदीश भाई या कौन था उसने बोला था, बाबा मैं बाप को धर्मराज के रूप में भी याद करता हूँ, क्योंकि यही जो बाप मुझे प्यार दे रहा है, स्नेह दे रहा है, आगे इसका पार्ट धर्मराज के रूप में भी होगा। तो जब कोई गलती होने वाली हो, या ऐसा लग रहा है कि मन विचलित हो रहा हो, या ऐसा लग रहा है कि कुछ विकार का प्रभाव है, तो उस समय बाप को वो माँ के रूप में या स्नेह वाले रूप की बजाय धर्मराज के रूप में याद करें। इसीलिए हमने अपने पास एक मुरली का छोटा सा वो पैराग्राफ्स कई कलेक्ट किए थे, जैसे बाबा का धर्मराज का रूप विशेष रहता है। उसमें बाबा ने बहुत सारी चीजों के लिए बोला, आकर्षण के लिए बोला, और एक दूसरे के ऊपर दृष्टि जान, जिसमें बाबा ने यहां तक की बोला है कि इसको कमजोर मत समझना, इसको छोटी बात नहीं समझना, यही बाप जो है धर्मराजपुरी में एक गलती की 100 गुनी सजा दिलवाएगा, इस जगह बाप माफ नहीं कर सकता है। तो बाबा के ऐसे स्वरूप को भी याद रखेंगे तो जो पाप कर्म हमारे से होने वाले हैं उससे हम बच जाएंगे, क्योंकि यहां हमारा चुकतू भी हो रहा है तो हम बनाते भी जा रहे हैं। हाँ, प्लान बना के, हाँ, अमृत वेले की तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे कि विशेष चाहे सकाश देने की है, या बाबा से संबंध से याद करने की है, या कोई विशेष ड्रिल है। लेकिन अगर उस तैयारी को करने से पहले अगर उसके साथ के हम छोटे छोटे अभ्यास को तैयार रखेंगे कि जैसे अगर बाबा से संबंध के रूप में याद करना है तो एक या दो दिन पहले हम फिक्स कर लेंगे कि इस डेट को हमें बाबा से इस रूप में या इस चीज के लिए बैठना है, और उन दो तीन दिन में हमको उसी चीज का ही अभ्यास करना, उसी से संबंधित अगर हमारे पास मुरली के पॉइंट्स है उसी पे चिंतन करना है, उसी पे ही सोचना है और उसी से ही कनेक्ट हमारे पास अभ्यास होने चाहिए रोज के करने में, ताकि जब हम जैसे ही अमृत वेला बैठे तो हमें कुछ ऐसा ना लगे कि करना है, ऐसा लगे सब हो रहा है, एक एक करना और एक एक हो रहा है। तो जैसे कहीं कहीं एक बार हमारे यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आया तो उसको पूछा कंप्यूटर आता है, कह रहा हाँ आता है, तो बोला कि केवल हमें विंडो खोलना आता है तो बाकी सब क्या यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हो। तो माना हमारे पास वो चीजें होनी चाहिए क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो ऐसे जब बाबा के पास बैठे योग के लिए तो ऐसा ना हो कि हम कुछ सीख रहे हैं या कर रहे हैं, हमारा जो पहले का टाइम है वो हमारी तैयारी में, एक्सरसाइज में या जो भी हमारी वीकनेस है उसको दूर करके उसके बाद बैठे। क्योंकि एक तो जो आत्मा है वो कई जन्मों की देह भान में लिपटी हुई है और जिससे योग करना वो परम आत्मा, वो उस देह के उसमें आता ही नहीं, टच ही नहीं हुआ है। इसलिए जब दो आत्माओं में थोड़ी समानता होती है तब वो मिलन का रस आता है। इसीलिए भगवान को तो सब याद करते सब बच्चे, लेकिन हर एक का अनुभव अलग अलग होता है। तो ये नहीं कह सकते बाबा हमें कम दे रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर ये जो चमड़ी के कई सारे लेयर्स लगे हुए हैं उसी से हम उसे कैच नहीं कर पाते हैं। और कोई बात? योग लगे ना लगे बाबा ने बोला के हाँ। वैसे ये भी इसी अमृत वेले की बुक में ही बाबा ने बोला है कि नहीं भी लगता है तो कम से कम आके बैठो, लेकिन ये उनके लिए बोला है जिनकी बड़ी कंडीशन एकदम बिल्कुल खराब होती है। जैसे सेंटर पे कोई भाई बहन होते हैं ना जो बिल्कुल ही नहीं आते, तो बहन जी कहती तुम आके बस 5 मिनट बाबा के कमरे हाजिरी लगा के चले जाओ, और जो कोई कुमार ऐसा बाजू में खड़ा होकर देखता है तो बड़ी अच्छी तरीका है हम भी। तो एक दिन बहन जी ने कहा तुम क्यों नहीं आते 2-3 दिन से, वो नया ही था, तो बोला कि दीदी आपने वो भाई को बोला था ना कि कम से कम हाजिरी जरूर लगाओ, तो हम भी यही करते। तो ऐसे मतलब फॉलो नहीं कर लेना, क्योंकि लक्ष्य फिर उसके बाद ऊपर का रखना चाहिए, वहां को नहीं देखना चाहिए। ऐसे देखेंगे तो अपने में मैपन भी आ सकता है, उनसे तो हम अच्छे ही है ना, कि जो लोग बैठते नहीं, योगी नहीं करते, सोते रहते हैं, हम कम से कम बैठते हैं, झुटका लेते हैं, भले क्या हुआ उठते तो है। तो ऐसा पॉजिटिव नहीं समझ लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा कर्तव्य हमारा। जैसे बाबा ने अभी मुरली में बोला ना 4 बातें लास्ट में, एक कौन सी बातें याद रहनी चाहिए हमेशा? कर्तव्य। एक बोला कि अपना घर, अपना राज्य, अपना बाप और अपना कर्तव्य। कोई का अगर कर्तव्य रह जाता तो उसको कैसे देखते कि आपका ये कर्तव्य, ये आपकी ड्यूटी थी। यहाँ पे भी अगर कोई ने सेवा नहीं करी तो 4 लोग बताते आपका काम था क्यों नहीं किया आपने। सोचो भगवान हमें ये कर्तव्य दिया, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? स्थूल तो कर ही रहे हैं, कहीं इसमें अगर थोड़ी सी गद्दारी कर दी तो कितना बड़ा बोझा चढ़ जाएगा। ठीक, ओम शांति।